शांति का स्वर्णिम सवेरा आ रहा, दुख व शांति का अंधेरा जा रहा, शांति का स्वर्णिम सवेरा आ रहा, दुख व शांति का अंधेरा जा रहा,
जा रहा।
Yes, I बना जब मीत बनाया थामा उसने हाथ टूट कभी ना सकता है ये जन्म जन्म का साथ ऐसे अनोखे प्यार पे अपना ऐसे अनोखे प्यार पे अपना तन मन सदा निसार सागर से भी गहरा अपना बाबा के संग प्यार सागर से भी गहरा अपना उठना बैठना डलना फिरना बाबा के ही संग कभी ना छूटे ऐसा लागा प्रभु के संग रंग बाबा के बच्चों का तो बस बाबा के बच्चों का तो बस बाबा ही संसार सागर से भी गहरा अपना बाबा के संग प्यार सागर से भी गहरा अपना
शांति अभी हम डांस पार्टी और होने वाले विनाश के बारे में विचार विमर्श करेंगे जो भी बातें मैं आपके सामने रख रहा हूं जरूरी नहीं है वो 100% सत्य होगी लेकिन काफी हद तक वो सत्य होंगी ही जो मैं बातें बता रहा हूं उसका आधार क्या है उसका आधार है संदेशी बहनों के द्वारा कुछ बातें प्राप्त हुई हैं दादियों के साथ में कुछ समय प्रति समय चर्चा हुई है वर्तमान समय बाबा के इके अनुसार मंथन चल चुका है और साथ में स्वयं का भी उसमें मंथन है उन सभी बातों के आधार से मैं आपके सामने ये बातें रख रहा हूं। 1937 में जब बाबा को साक्षात्कार हुआ कि पुरानी दुनिया का कैसा विनाश होगा और नई दुनिया इस धरा पर कैसे आएगी, उस समय एटॉमिक बम का आविष्कार भी नहीं हुआ था, पता ही नहीं था किसी को कि एटॉमिक बम होता क्या है। उस समय बाबा ने बताया कि इस सृष्टि का विनाश तीन बातों के माध्यम से होगा। पहली बात है नेचुरल कैलेमिटीज द्वारा होगा, कृत्रिम आपदाओं के द्वारा होगा। दूसरी बात है एटॉमिक वार के द्वारा होगा और तीसरी बात है सिविल वार के द्वारा होगा। सतयुग में जो हमारी सृष्टि थी उसका एक्सिस 90 डिग्री था। हर दिन सतयुग में पूर्णिमा होती थी, हर दिन पूर्णिमा होती है। तो दो युगों तक ये प्रकृति का बहुत सुख हमने लिया, लेकिन जैसे देवताएं वांग मार्ग में प्रवेश हो गए हैं, विकारों में प्रवेश हुए हैं, तो सारी धरती उथला पतल हो गई। बहुत बड़े बड़े अर्थक्वेक होते गए और उन अर्थक्वेक में हमारे जो सोने के महल हैं वो धराशायी हो गए और सृष्टि का एक्सिस 60 डिग्री हो गया। जो 90 डिग्री था वो 60 डिग्री हो गया। 60 डिग्री होने के कारण क्या हुआ, कहां ठंडी ज्यादा तो कहां ठंडी कम, इससे क्या हुआ, सागर का पानी बर्फ में ट्रांसफर होता गया और सागर की वाटर लेवल कम होती गई। फिर जो है कुछ जगह खाली होती गई, लोगों को दिखाई दी विश्व के ग्लोब पर। तो जहां जगह खाली दिखाई दी वहां भारत से लोग वहां जाते गए और बसते गए और नए नए देशों के आविष्कार हुए, नए नए देश बस गए। और उससे साउथ और नॉर्थ पोल पर बड़े बड़े बर्फ के पहाड़ बन चुके हैं अभी। तो वहां के वातावरण के आधार से उनके फेस के फीचर्स बदलते गए, उनकी चमड़ी का कलर बदलता गया। यूरोप में विशेष ठंडी कम होने से उनकी चमड़ी गोरी हो गई, अफ्रीका में गर्मी जास्ती होने से ब्लैक हो गई। तो जैसे जैसे ये लोग चलते जा रहे हैं तो धीरे धीरे परम धाम से आत्माएं आती रही, जनसंख्या बढ़ गई। तो जो भी बड़े बड़े पहाड़ बन चुके हैं, आबू की पहाड़ी समझो, जो नकी लेक हैं, ये होलकैनिक स्पॉट है। वहां से बहुत बड़ी होलकैनिक निकल गई, ज्वालामुखी फट गई और जो लावा रस जो है वो धीरे धीरे शांत होता है, ठंडा होता है, तो ऐसे ब्लैक स्टोन्स के पहाड़ ऑटोमेटिक बनते गए। और फिर जो खड्डे हैं जो वोल्केनिक स्पेस हैं वो तालाब की तरह लेक की तरह बनते गए। तो इस संसार में दो बार विशेष अर्थक्वेक होते हैं, एक तो द्वापर के शुरू में त्रेता के अंत में बड़े अर्थक्वेक होते हैं और दूसरा अर्थक्वेक कलयुग के अंत में और सत्ययुग के शुरू में बहुत बड़े अर्थक्वेक होते हैं। तो ये जो सृष्टि है ग्लोब है इसके ग्लोब के ऊपर एक ओजोन गैस की लेयर होती है, वो क्या करती है सूरज से जो अल्ट्रा वायोलेट रेजेस आती हैं उनको रोकती है। लेकिन अभी समय के अनुसार हम ओ3 गैस जो है ओजोन गैस जास्ती यूज कर रहे हैं, जो स्प्रे है फ्रीज है जो भी है उसमें ये गैस जास्ती यूज कर रहे हैं। इसके कारण ये जो ओजोन लेयर है वो पतली होती गई और उसमें कई जगह होल भी होते गए। उसके कारण अल्ट्रा वायोलेट रेजेस जो हैं इस धरती पर पड़ने लगे और उसके कारण जानलेवा बीमारियां कैंसर जैसी बढ़ती गई और साथ साथ धरती की गर्मी भी बढ़ गई, क्योंकि सूर्य की डायरेक्ट किरणें उस पर पड़ रही है धरती पर, तो ग्लोबल वार्मिंग शुरू हो गई। तो वैज्ञानिकों ने स्पष्ट किया कि जब ये ग्लेशियर पिघलेंगे तो सागर की जो वाटर लेवल है 7-8 मीटर की ऊंची ऊंची लहरें सागर से उठेगी और उसमें कई शहर तबाह हो जाएंगे। बाबा ने तो ये कहा है कि पांचों तत्व और पांचों विकार दसों एक ही साथ अंतिम समय अटैक करेंगे, उस समय क्या हाल होगा आप सोच सकते हैं। एक सुनामी आती है हलचल में हिला देती है, ये पांचों तत्व एक ही साथ अटैक करेंगे और पांचों विकार एक ही साथ अटैक करेंगे तो क्या हालत होगी सोच सकते हैं। उसके लिए हमें कितनी प्रिपरेशन करना जरूरी है उनका सामना करने के लिए बाबा बार बार हमें इशारा देते हैं अचानक एवर रेडी का। तो एटॉमिक वार ये दो धर्मों के बीच में होगा, क्रिश्चियन और मुस्लिम धर्म। अभी दुनिया में सबसे बड़े ये दो धर्म हैं, तो आपस में रशिया और अमेरिका जो कबल प्रोक्ष के ऊपर बताते हैं दो बिल्ले लड़ रहे हैं। रशिया में मैं गया था, वहां काफी सारे मुस्लिम हैं और रशिया जो है गुप्त रीति से मुस्लिम कंट्री को अंडरग्राउंड मदद करता है, टेक्नोलॉजी देता है, वेपन्स देता है, जो भी देता है। अभी दोनों की दोस्ती है रशिया अमेरिका की, लेकिन किसी कारण जो है अनबन होगी और उसके बाद ड्रामा अनुसार ये तीसरा महायुद्ध होगा। अभी इतनी एटॉमिक पावर हमारे पास है जो कई बार सारे सृष्टि का विनाश हम कर सकते हैं, इतनी एटॉमिक पावर अभी हमारे पास है उपलब्ध है। तो ये जो युद्ध है वन साइडेड का नहीं होता है, टू वे वार होता है। जैसे महाभारत में बताते हैं इधर से अग्निबाण आ गया और इधर से भी अग्निबाण आ गया, दोनों एक दूसरे से टकरा गए और खत्म हो गए। तो अमेरिका ने रशिया पर और रशिया ने अमेरिका पर मिसाइल सारे सेट कर चुके हैं, सारा रेडी है। अभी केवल बटन दबाने की बात है, बटन कौन दबाएगा, बटन कैसे दबेगा। अगर एक व्यक्ति बटन दबाता है तो लाखों करोड़ों लोग उसमें शरीर छोड़ेंगे, उसका बहुत किताब बनेगा। इसलिए कोई भी व्यक्ति इस बटन को नहीं दबाएगा, लेकिन कंप्यूटर एरर के द्वारा या अर्थक्वेक के द्वारा एक साइड का बटन दबेगा तो ऑटोमेटिक ये वार शुरू होगा। कई बार तो जैसे उनका आपस में न्यूट्रलाइजेशन होगा एटॉमिक वार बॉम्ब्स का, लेकिन गलती से ये बॉम्ब इधर गया अमेरिका तबाह, गलती से इधर गिर गया रसिया वहां। तो पहले रिहर्सल होगी और धीरे धीरे जो है वो होलसेल युद्ध के रूप में होगी। बाबा ने एक बार कहा था विदेश में जो मौत होगी वो सहज होगी, कुछ एक सेकंड में ही विनाश होगा, क्योंकि एटॉमिक वार जो होता है वो विशेष रात्रि के समय होता है या अमृत वेले के समय अंधेरे में होता है, उस समय लोग सोए रहते हैं तो उनको इतनी पीड़ा नहीं होगी, उतनी उनको तकलीफ नहीं होगी। लेकिन इंडिया में जो है वो सिविल वार हो, सांप्रदायिक झगड़े होंगे और सिविल वार के द्वारा बाबा ने कहा बहुत तबाही होगी। तो जैसे सिविल वार शुरू होगा उस समय ब्रह्मा कुमारियों का बोल बारह सारे विश्व में होगा। अभी बाबा के झंडे सारे विश्व में बड़े शहरों में बड़े बड़े कॉन्टिनेंट्स में फहरा गए हैं, फहर चुके हैं। अभी जो मैसेज मिलेगा वो मीडिया के द्वारा मिलेगा और साक्षात्कार के द्वारा अनेक आत्माओं को मैसेज मिलेगा कि इंडिया में भारत में भगवान आ चुका है, निराकार है और वो पवित्रता चाहते हैं, नई दुनिया स्थापन करने जा रहे हैं, ऐसा वो स्वीकार करेंगे मानेंगे तो ऐसे मानने वाले कई आत्माएं जो हैं त्रेता के अंत तक के जो प्रजा हैं उसमें कहीं आएंगे। ये बाबा ने अभी कुछ समय दिन पहले भी बोला, जरूरी नहीं वो हमारे जैसे ज्ञान धारण करेंगे और अपना जीवन बनाएंगे, समय ही नहीं होगा उनको। तो क्वालिटी वाली जो आत्माएं हैं, बाबा के जो अनन्य बच्चे हैं, राजे महाराजा के रूप में अभी तैयार हो चुके हैं, केवल प्रजा को आना है, डेकोरेशन को आना है, तो उसके लिए टाइम नहीं लगेगा। जैसे कोई बीमार होता है तो डॉक्टर को ढूंढता है और वहां लाइन लगती है, ऐसे जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे मानसिक बीमारियां बढ़ती जाएगी, माया के पेशेंट बढ़ते जाएंगे, लोग ब्रह्मा कुमारियों को ढूंढेंगे कि भाई हमें कुछ दो, हमें शांति दो, हमें शक्ति दो और हमें सेवा करने का बहुत चांस मिलेगा। अगर हमारी स्थिति अच्छी होगी तो हमें अनेक आत्माओं की सेवा करने का गोल्डन चांस मिलेगा। तो अभी विनाश के समय क्या हुआ, कई जो सोने के महल हैं वो अंदर चले गए और कई जो सोने के खान मिली, तो 150 साल जो अंग्रेजों ने राज किया, कई सीप के सी भर के वो यहां से सोना हीरे जवाहर ले गए। तो जो सोना यहां से चला गया विदेश में वो भी यहां पुनः वापस आएगा। कैसा आएगा, तत्वों के द्वारा, सागर के द्वारा, ऐसा वो मटेरियल और हमें यहां नए महल बनाने के लिए मटेरियल के रूप में उपलब्ध होगा। लंदन में मैं गया था 93 में, वहां एक ज्वेल्स है उसमें कोहिनूर हीरा जो पंजाब के राजा के से अंग्रेज लेके गए, उसको तोड़ के थोड़ा सा हिस्सा उन्होंने रखा और वो थोड़ा सा हिस्सा हीरे का घूमता रहता है और उस पर लाइट का फोकस रहता है, उसको देखने के लिए वो 93 में 50 पाउंड उसकी फीस थी, उस समय 2500 उसकी ये थी केवल एक व्यक्ति की, अभी तो और बढ़ाते गए हैं। तो कहने का मतलब जो है कोहिनूर हीरा जो भी मटेरियल यहां से सोने जवाहर वगैरह ले गए वो सारा पुनः माल हमें वापस आएगा, और जो भी नीचे गया है वो अर्थक्वेक के द्वारा और बाहर आएगा और हमें महल बनाने के लिए इंजीनियर्स भी उपलब्ध होंगे, मटेरियल भी उपलब्ध होंगे और उस समय ये महल बहुत तेजी से हमारे लिए सेवा में हाजिर हो जाएंगे, समझा। तो एटॉमिक वार द्वारा न कैलेमिटीज द्वारा और सिविल वार के द्वारा ये विनाश होगा। तो विनाश के बारे में हमें सोचना नहीं है, क्योंकि हर क्लब हमने उस दर्श को देखा है, कोई नई बात नहीं है, कोई पहली बार हम नहीं उसको देख रहे हैं। लेकिन उस विनाश को देखने के लिए हमें अपनी स्थिति को मजबूत बनाना है, और विनाश होने के पहले मुझे अपनी बुराइयों का विनाश करना है और बाबा से पूरा वर्षा लेना है। ये चिंता, ये तात हमें सदा लगी रहे। बाबा ने कहा था, लड़ाई शुरू हो गई तो आप कुछ भी नहीं कर सकेंगे, न अपने लिए न औरों के लिए। इसलिए लड़ाई शुरू होने के पहले मेरे से जो कुछ लेना है ले लो। बाप रिटायर होता है तो कहता है, मेरे रिटायर होने के पहले मेरे बच्चे मेरे से सब कुछ ले ले। तो बाबा पहले आवाज होता था, भगवान आया हुआ है, अभी आवाज हो रहा है, भगवान अभी जाने वाला भी है वापस। तो बाबा चाहते हैं समय के पहले मेरे बच्चे मेरे से अपना वर्षा, अपना अधिकार, खजाने ले जाए, संपन्न हो जाए। ये बाबा की शुभ इच्छा है, ये चाहना है। इसलिए बाबा हमेशा समय के बारे में हमें मैसेज देते रहते हैं, समझा। तो विनाश अपनी जगह है, लेकिन विनाश के पहले मुझे अपनी बुराइयों का विनाश करना है और बाबा से वर्षे का अधिकार प्राप्त करना है। इस पर हमें विशेष ध्यान देना है। अभी एडवांस पार्टी किसको कहते हैं? एडवांस पार्टी में कौन कौन जाता है और कहां जाता है, ये बात समझने की है। सबसे पहले एडवांस पार्टी किसको कहते हैं? मैं आबू से आ रहा था बटनेरा, तो लता दीदी ने दो भाइयों को एडवांस में 2 घंटे पहले एडवांस में वहां भेजा था रेलवे स्टेशन पर मुझे रिसीव करने के लिए। 2 घंटे एडवांस में भेजा था ताकि मुझे रिसीव करे। तो एडवांस पार्टी उसको कहते हैं जो नई दुनिया की जो देव आत्माएं हैं उनको रिसीव करने के लिए, उनको जन्म देने के लिए जो आत्माएं जाती हैं, जो पार्टी जाती हैं, उनको एडवांस पार्टी कहते हैं। एडवांस में जाते हैं तो रिसीव करते हैं, उनको योग बल से जन्म देते हैं। अभी एडवांस पार्टी में जाता कौन है? उदाहरण के तौर पर एक व्यक्ति है, 2-4 साल बाबा का बच्चा बनकर उसने शरीर छोड़ दिया, नया बच्चा है, बूढ़ा था, शरीर छोड़ दिया। और दूसरा व्यक्ति है, उसने 10-20-25 साल तक योग का अभ्यास किया, जिसके पास योग का बल है, अब दोनों शरीर छोड़ते हैं। तो ये कहां जन्म लेंगे? ये जो नई आत्मा है जिसके पास इतना योग बल नहीं, वो दुनिया के किसी भी कोने में जाकर जन्म लेगा, विदेश में भी ले सकता है। वो करता क्या है? वो वहां उस परिवार में जन्म लेता है और अपने शक्ति के द्वारा संस्कारों के आधार से उस घर की आत्माओं को बाबा के पास ले आता है और स्वयं भी ज्ञान योग की पढ़ाई शुरू करता है। लेकिन जो पुरानी आत्मा है जिनके पास योग बल है, वो केवल भारत में ही जन्म लेती हैं एडवांस पार्टी के रूप में, और कहीं जा नहीं सकती वो, क्योंकि विनाश में भारत ही ऐसा अविनाशी खंड है, उसका कुछ एक हिस्सा जो है बचता है। और अकॉर्डिंग टू गॉड्स प्लान ऐसे एडवांस पार्टी वाली आत्माएं विनाश में बचेंगे, वो शरीर नहीं छोड़ सकते। अगर सारे ही प्रलय हो जाएगा, सारे ही शरीर छोड़ेंगे, तो जो लक्ष्मी जो देवी देवता हैं उनका शरीर कहां से आएगा, कैसे पैदा होगा उनका शरीर? उसके लिए ये एडवांस पार्टी वाली आत्माएं इस संसार में बसती हैं और योग बल के द्वारा उनका जन्म वो दैवी आत्माओं का देते हैं। भी मम्मा 1965 में शरीर छोड़ा, जिस समय मम्मा ने शरीर छोड़ा, मम्मा की डेड बॉडी सामने थी, उस समय बाबा के बच्चे रो रहे थे और बाबा को कहते थे, बाबा मम्मा को वापस भेज दो। ब्रह्मा बाबा को कह रहे थे बार बार, तो ब्रह्मा बाबा ने कहा संदेशी बहन को, जाओ ऊपर वाले बाबा को बताओ, बाबा भेजे तो अच्छी बात है। दो तीन बार भेजा लेकिन ऊपर से मैसेज आया कि ये गॉड्स प्लान है, जैसे ब्रह्मा बाबा की आत्मा यहां स्थापना के कार्य में मौजूद है, ऐसी मुझे पावरफुल आत्मा एडवांस पार्टी में चाहिए, इसलिए ये भगवान का प्लान है, ये चेंज नहीं हो सकता है। अभी मम्मा 45 साल की थी उस समय उन्होंने शरीर छोड़ा 65 में, अभी उन्होंने जन्म लिया है और उनकी उम्र भी 40-45 के ऊपर होगी। अभी वो यंग कुमारी जो है कहीं पर भी जन्म ली होगी तो प्रश्न उठता है क्या उसके माँ बाप शादी के लिए फोर्स नहीं करेंगे। लेकिन मम्मा जैसी आत्मा, इतनी पवित्र आत्मा जहां भी जन्म लेगी वो घर वाले कहेंगे हमारे घर में तो देवी आई हुई है, जो वो कहेगी उसका कहना हमें मानना है। तो जगदीश भाई ने मम्मा को ढूंढने के लिए बहुत प्रयास किया, नेपाल में गए, भारत में कई स्थानों पर गए, और इस दुनिया में नेपाल ही ऐसा एक स्थान है जहां कुमारियों की अभी भी पूजा होती है। वहां कौमाक्षा नाम का एक मंदिर है, मैंने देखा वहां एक कुमारी को बिठाते हैं, और राजा जो है कोई भी महत्वपूर्ण काम करना होता है उस कुमारी की पूजा करते हैं, कुमारी से ब्लेसिंग लेते हैं और वो अपना कार्य करने जाते हैं। उस कुमारी के शरीर से थोड़ा सा भी ब्लड निकल जाता है, निकलता है तो उसको हटा देते हैं, दूसरी नई कुमारी को बिठाते हैं। ये प्रथा वहां की चलती आ रही है। तो अभी मम्मा ने जन्म कहा लिया होगा, एक बार प्रकाशमणि दादी बाबा को पूछते, बाबा मम्मा को कहां छिपा के रखा है बताओ ना आप, क्यों नहीं बताते? बाबा ने कहा ड्रामा का राज बाबा नहीं बता सकते, अगर आपको बताएंगे मम्मा ने कहां जन्म लिया तो सारे वहां भागेंगे और उसको अपना पार्ट बजाने में भी दिक्कत करेंगे, इसलिए ड्रामा का राज बाबा नहीं बता सकते। तो मम्मा के बारे में दो प्रश्न हमने बाबा से डायरेक्ट मधुबन निवासियों ने पूछे थे, अब एक बाप दादा को मेडिटेशन हॉल में। पहला प्रश्न था कि मम्मा का जन्म जो है 84 जन्म था, अभी मम्मा ने नया जन्म लिया है, क्या वो जन्म 85 कहेंगे? ये प्रश्न पहला था। दूसरा प्रश्न था कि मम्मा क्या संपूर्ण थी, अगर संपूर्ण थी तो मम्मा ने क्यों नया जन्म लिया, क्या उसके मां बाप के साथ उसका हिसाब किताब था? ये प्रश्न दूसरा था। तो पहला प्रश्न का जवाब बाबा ने दिया कि संगम योगी जो जीवन है यह ईश्वरीय जीवन है, ईश्वरीय सेवा के लिए है। तो कोई शरीर छोड़ता है दूसरा है तो केवल वो वस्त्र चेंज करता है और स्थान चेंज करता है, लेकिन रहता ईश्वरीय सेवा पर ही है, तो जन्म 84 ही कहलाएगा, 85 नहीं कहलाएगा। दूसरी बात है कि मम्मा क्या संपूर्ण नहीं थी, क्या उसके अपने पेरेंट्स के साथ हिसाब किताब थे, क्यों मम्मा ने जन्म नया, कुछ अपवाद की केसेस होती हैं, मम्मा ने अपना पार्ट तो पूरा किया लेकिन एक्सेप्शनल केसेस के रूप में बाबा ने एक्स्ट्रा सेवा पर मम्मा को भेजा है, ऐसा बाबा ने कहा था। तो दीदी ने जब शरीर छोड़ा 83 में, तो उन दिनों में मैसेज बाबा से आ रहे थे, 13 दिन के 13 मैसेज आ रहे थे। तो एक मैसेज में बाबा ने कहा कि दीदी जो है कृष्ण की मां आप बन सकती हैं, कि कृष्ण दीदी की हमेशा चाहना होती थी मेरे गोदी में मैं कृष्ण को पालती रहूं। तो उस समय बाबा ने कहा मुझे 4 पावरफुल पिलर्स चाहिए, 2 कृष्ण के लिए मां बाप और 2 राधे के लिए मां बाप। और उन्हीं दिनों में विशेष कुछ एक दादियों ने शरीर छोड़ा था, ये शायद आप भी जानते हैं। कहने का मतलब पावरफुल आत्माओं को जन्म देने के लिए पावरफुल आत्माएं चाहिए, साधारण आत्माओं को जन्म देने के लिए साधारण आत्माएं चाहिए। अभी 9 लाख जिस समय कृष्ण का जन्म जो बताते हैं वो जेल में बताते हैं, कृष्ण का जन्म कब होगा इसके बारे में कोई कुछ बोल नहीं सकता है, लेकिन ऐसी संभावना है कि जब होलसेल मौत होगा, ट्रिब्यूनल वहां होगी, ट्रिब्यूनल में ब्रह्मा बाबा अष्टरतन में होंगे और सभी आत्माएं वहां से पास करेंगे और सूक्ष्म शरीर के द्वारा कुछ उनके हिसाब किताब होंगे तो वो सजाव के द्वारा पूरा करेंगे। बाहर के लोगों को केवल दो पाप कर्मों को सेटल करने के लिए दो तरीके हैं और हमारे लिए तीन तरीके हैं, एक योग बल के द्वारा, दूसरा सफरिंग के द्वारा और तीसरा जो है धर्मराजपुरी के द्वारा हम अपना अकाउंट सेटल करते हैं। तो हमारा जो शरीर है सूक्ष्म शरीर 84 जन्मों का सूक्ष्म शरीर 84 होता है, वो एक शरीर छोड़ते हैं, मां के पेट में जो पिंड होती है उसमें आत्मा जाती है तो उसमें वो सूक्ष्म शरीर मर्ज हो जाता है, लेकिन 84 वे जन्म का सूक्ष्म शरीर सूक्ष्म वतन तक जाता है और वहां सूक्ष्म शरीर के द्वारा हमें सूक्ष्म सजाएं भोगनी पड़ती हैं अगर बाकी हमारा अकाउंट है तो। वो कैसे सजाएं भोगते हैं, कुछ एक सेकंड में ऐसा अनुभव होता है कि कोई मुझे 100 सासे तेल की कढ़ाई में उबाल रहा है, या कोई मेरे दो टुकड़े कर रहे हैं, या कोई मेरी चमड़ी उखाड़ रहा है, या कोई मुझे बहुत ऊंची पहाड़ी से फेंक रहा है, तो ऐसी कुछ एक सेकंड में ही ऐसी दुख दर्द की फीलिंग होती है जिसमें हम अपने पाप कर्मों का सेटलमेंट करते हैं। उसके बाद हमारा सूक्ष्म शरीर वहीं छूट जाता है और आत्मा जो है परम धाम में चली जाती है। अभी ब्रह्मा बाबा ट्रिब्यूनल का काम पूरे करने के बाद फिर परमधाम जाएंगे, रेस्ट हाउस में थोड़ी रेस्ट होके फिर बाद में कृष्ण के रूप में धरती पर आएंगे, पहली आत्मा पावन इस धरती पर आएगी। तो कहते हैं कृष्ण के बारे में, कृष्ण का जन्म जेल में हुआ। जेल में क्यों बताते हैं, जेल में माना गुप्त रीति से हुआ है। क्यों होता है, क्योंकि विकारी लोग उनको देख नहीं सकते हैं, क्योंकि पवित्र आत्मा पवित्र शरीर है तो विकारी लोगों को देखने का उनको अधिकार नहीं है, इसलिए कहते जेल में उनका हुआ है। एक ने उसको जन्म दिया है और दूसरी माँ उसको पालती है, दो माँ उसको बताते हैं। तो ये क्यों वर्णन आया है, तो जन्म देने वाली एक माँ है लेकिन कृष्ण की जो सेवा करने वाली दास दासियां होगी सारे दिन भर उसकी सेवा करेगी, तो उसके रूप में उसकी दूसरी माँ का वर्णन शास्त्रों में बताते हैं, एक ने जन्म दिया दूसरों ने उसको पाला। तो कृष्ण जैसे ही धरती पर आएगा उसके पहले राधा 5 साल 6 साल के बाद मम्मा राधे के रूप में जन्म लेगी। अभी मम्मा का रोल क्या है, अभी कोई भी गवर्नमेंट 14 में आती है, हिंदू गवर्नमेंट आती है, कांग्रेस आती है, कोई भी आती है, लेकिन ऐसे धार्मिक झगड़े होंगे आपस में कसम कशा होगा वो कोई भी गवर्नमेंट जास्ती समय तक नहीं चलेगी और हैंड्सअप करेगी। उसके बाद प्रेसिडेंट रूल आएगा, थोड़ा सा कड़क रूल आएगा, वो भी कुछ समय चलेगा, वो भी कंट्रोल नहीं कर सकेगा। उसके बाद मिलिट्री रूल आएगा, मिलिट्री रूल माना सबसे कड़क रूल, और जिस समय ये माहौल कसम कसम का होगा उस समय मिलिट्री कमांडर गुस्से में आकर ऑर्डर देगा शूट ऑन साइट, ये सुना दो। तो जब वो गुस्से में आकर ऑर्डर देगा तो लाखों करोड़ों लाशें पड़ेगी, तो उसको पश्चाताप होगा कि ये रूलिंग पावर मुझे नहीं चाहिए, मुझे ये किसी को देना है। तो ब्रह्मा कुमारियों का बोल बाला होगा, ब्रह्मा कुमारियों को ऑफर करेंगे, लेकिन ब्रह्मा कुमारियां कहती हमें ये नहीं चाहिए, ये कांटों की कुर्सी हमें नहीं चाहिए। तो मम्मा का कनेक्शन कृष्ण के पेरेंट्स के साथ होगा और मिलिट्री कमांडर के साथ होगा, वो मिडल वुमेन का काम करेगी, अगर आपको रूलिंग सत्ता देना है तो इनको दे दो, कृष्ण के पेरेंट्स को दो, और वो रूलिंग सत्ता जो है कृष्ण के पेरेंट्स के हाथ में जाएगी, उसके बाद कृष्ण के हाथ में आएगी, ऐसा मेरा मानना है। और मम्मा का विशेष कार्य पूरा होने के बाद मम्मा शरीर छोड़ेगी और फिर परमधाम जाके राधे के रूप में आएगी। अभी जो भी हमारी पुरानी दादियां हैं, इतनी बड़ी बड़ी दादियां, चंद्रमणि दादी, प्रकाशमणि दादी, दीदी ब्रजमेंद्र दादी, ये बाबा ने कहां छिपाया इनको, वो यहां पर भी हैं। तो बाबा ने क्यों छिपाया, कहां छिपाया, क्योंकि सतयुग और कलयुग का जो ट्रांजिट पीरियड है, इस ट्रांजिट पीरियड में कई महत्वपूर्ण काम करने हैं, इसलिए बाबा ने अपने मेंबर्स पहले ही भेज दिए हैं और सारा सेटलमेंट कर चुका है। समय पर सारे काम सहज हो जाएंगे, क्योंकि वो आत्माओं में बाबा के प्रति प्यार हैं, यज्ञ के प्रति प्यार हैं, तो बाबा इन आत्माओं के द्वारा ऐसे कार्य करेंगे। और फिर जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, विनाश का बोल बाला चारों तरफ होगा, तो साक्षात्कार की धूम मचेगी। जैसे यज्ञ के शुरू में साक्षात्कार सस्ता था, जो आता था उसको साक्षात्कार होता था, तो ऐसे अंतिम समय साक्षात्कार की धूम मचेगी। बाबा के बच्चों के द्वारा साक्षात्कार होने को होगा, नई दुनिया का साक्षात्कार। बाबा ने कहा बाहर जो है विनाश लीलाएं होती जाएगी, और जो मेरे अनन्य बच्चे हैं उनको मैं बहुत अच्छे साक्षात्कार करा के बहलाऊंगा, ताकि विनाश की आंच जो है उनों पर नहीं आएगी, दुख दर्द की अनुभूति उनको नहीं होगी। वो विनाश के नगाड़े बांसते रहेंगे, यहां खुशी के नगाड़े वो अनुभव करते जाएंगे, ये बाबा ने प्रमिस किया है। लेकिन उसके लिए हमें बाबा के साथ कनेक्शन जोड़कर, वॉइसलेस वायरलेस का कनेक्शन जोड़कर अपने बुद्धि को क्लियर रखना होगा। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, मनसा सेवा का बोल बाला होता जाएगा और परिस्थितियां बिगड़ती जाएगी, उस समय हमें बहुत अच्छी सेवा करने का चांस मिलेगा। तो जैसे जैसे इस यूनिवर्सिटी में जो रिजल्ट आउट होता है, बाहर की यूनिवर्सिटी का रिजल्ट पेपर में आउट होता है, मीडिया में आउट होता है, लेकिन इस यूनिवर्सिटी का रिजल्ट जो है साक्षात्कार के द्वारा आउट होता है। ये अष्ट रतन है, विश्व विजेता मेरिट वाले हैं ये अष्ट रतन, और ये 100 जो हैं ये फर्स्ट क्लास क्वालिटी के विजय रतन हैं, जिन्होंने माया पर पूर्णतया विजय प्राप्त की। तो ऐसा साक्षात्कार के द्वारा बिना इसका रिजल्ट आउट होगा, सारे संसार की आत्माओं को अष्ट रतन और 108 का साक्षात्कार होगा, 16,000 का साक्षात्कार होगा, और उन्हों को खुद को भी होगा। तो बाबा ने कहा अंतिम समय मेरे सामने मेरे ही बच्चों के दो लाइनें होगी, एक प्राप्ति स्वरूप बच्चों की और दूसरी पश्चाताप स्वरूप आत्माओं की लाइन होगी। प्राप्ति स्वरूप आत्माएं जो हैं वो खुशी में झूमते रहेंगे, भगवान मेरा बाप था, उससे मैंने बहुत कुछ वर्षा लिया, खजाने लिए, मैं भरपूर हूं, वो खुशी में झूमते रहेंगे। लेकिन पश्चाताप स्वरूप वाली आत्माएं जो हैं वो पश्चाताप करते रहेंगे, भगवान मेरा बाप था लेकिन मुझे मौका था, अलबेलापन के कारण मैंने वर्षा नहीं लिया, मेरी झोली खाली रही, पश्चाताप में आंसू बहाएंगे। तो बाप बच्चे को रोता हुआ नहीं देख सकता है, इसलिए ड्रामा का सीन बदल जाएगा। तो इसलिए हमें पश्चाताप स्वरूप आत्माओं की लाइन में नहीं खड़ा रहना है, लेकिन प्राप्ति स्वरूप आत्माओं में हमें स्वयं को अनुभव करना है। उसके लिए अभी से हमें एवर रेडी रहना है और स्वयं को खजानों से भरपूर करना है, क्योंकि हम जो है एडवांस पार्टी में नहीं जाएंगे, हम योग बल से, इच्छा शक्ति से, योग बल से शरीर छोड़ेंगे। योगाभ्यास में हम क्या करते हैं, शरीर से डिटैच होने का अभ्यास करते हैं, शरीर छोड़ने का अभ्यास करते हैं, इसलिए योगी आत्माओं को मक्खन से बाल निकलती हैं, ऐसा शरीर छोड़ने का अनुभव होगा, उनको दुख दर्द की महसूसता नहीं होगी। और फिर बाद में वो कृष्ण के साथ हम जन्म लेंगे, लेकिन कृष्ण का और राधे का जब स्वयंवर होगा, जब वो बड़े होंगे स्वयंवर होगा, कोरोनेशन का दिन होगा, उस समय उनके सामने 9,00,000 जो है लोक संख्या होगी, 9,00,000 प्रजा होगी, और वो 111 संवत होगा। अभी 9,00,000 दैवी आत्माओं को जन्म देने के लिए 18,00,000 एडवांस पार्टी वाली आत्माएं चाहिए। एक कपल अगर एक बच्चे को जन्म देता है, उसलिए 18,00,000 एडवांस पार्टी वाली आत्माएं चाहिए। तो इसलिए बाबा की बच्चे बनने का भी अभी रेशियो बढ़ा रहा है और एडवांस पार्टी में जाने का भी नंबर बढ़ता जा रहा है। ये प्रोसेस बहुत फास्ट होती जाएगी और उसमें हमें बहुत अच्छी तरह से आगे बढ़ने का चांस मिलेगा। इसलिए बाबा समय प्रति समय ये हमें मौके देते हैं, चांस देते हैं कि हमें अभी अचानक कुछ भी हो सकता है, हमें एवर रेडी रहना है। रेडी रहना है का मतलब क्या है? मधुबन में जाते हैं तो क्या करते हैं, कितने दिनों से तैयारी करते हैं? मुझे मधुबन जाना है, बैग बैगेज जो है सारे तैयार करते हैं हम। तो अभी हमें घर जाना है, उसके लिए एवर रेडी करना है, अर्थात सारे जो रस्सियां हैं बंधन की, उससे मुझे स्वतंत्र अनुभव करना है। पिंजड़े से मैं पंछी स्वतंत्र हूं, इस देह रूपी पिंजड़े से भी और जो भी रस रूपी रस्सियां बांधने वाली हैं उनसे भी मैं फ्री हूं और भरपूर खजानों से मैं भरपूर हूं, घर जाने के लिए ओवर रेडी हूं, ऐसा अनुभव हमें हो, तब कहेंगे कि हमने बाबा से बहुत वर्षा ले लिया है। क्योंकि अचानक कभी भी कुछ भी हो सकता है, ये बार बार बाबा इशारा दे रहे हैं। क्योंकि आखिरी पेपर तो हमें बता बाबा ने, अंतिम पेपर हमारा कौन सा है भाई? हाँ मास्टर जी, अंतिम पेपर हमारा एक सेकंड का ही होगा, नष्ट मोहा और स्मृति लब्धा का। एक सेकंड में देह से न्यारा और उसी सेकंड बाबा की याद में प्यारा टिक जाना, वो हमारा अंतिम पेपर है। उस अंतिम पेपर में अच्छी तरह से मार्क्स लेने हैं तो उसकी तैयारी हमें लंबे समय तक है, बहुत काल का अभ्यास हमें जरूरी है। जो स्टूडेंट्स बहुत काल का अभ्यास करते हैं वो परीक्षा में पास होते हैं और जो थोड़े समय का अभ्यास करते हैं वो एग्जामिनेशन हॉल में जाके ही घबरा जाते हैं, आत्मविश्वास को खो देते हैं, धैर्यता को खो देते हैं और जो भी पढ़ाई वगैरह है सारा भूल जाते हैं और फेल हो जाते हैं। तो बहुत लंबे समय का ये अभ्यास हमारा जरूरी है, तभी हम अंतिम पेपर में पास विथ ऑनर होंगे। इसलिए बाबा हमें ये गोल्डन चांस दे रहा है ऐसा बहुत सुंदर गहन अनुभूतियां करने का। दुनिया में जो धनवान होते हैं, वैभव से संपन्न होते हैं, उनको धनी कहते हैं और ब्राह्मण संसार में सबसे धनी कौन है? कौन है? जिनको पास अनुभव का, अलौकिक अनुभव का धन है, वो वास्तव में धनी आत्माएं हैं। इसलिए मुझ आत्मा के पास ये अलौकिक अनुभव का धन बढ़ता जाए बढ़ता जाए, मैं स्वयं को माला माल करती जाऊं, यही तात और यही लाज सदा लगी रहे, इसकी चिंता हमें रखना है, समझा? तो इसलिए एडवांस पार्टी, बाबा कहते हैं बार बार मेरे पास एडवांस पार्टी आ रही है, मेरे पास जो है तत्व भी आ रहे हैं, 500 तत्व कि हमें छुट्टी दो। ये कब तक हम इंतजार करेंगे? अपने बच्चों को तैयार करो। बाबा कहते मैं केवल आपके लिए इंतजार कर रहा हूं, आप तैयार हो जाएंगे तो मैं प्रकृति को भी आर्डर दूंगा और एडवांस पार्टी को भी आर्डर दूंगा, केवल हमारे लिए गाड़ी रुकी है। इसलिए बाबा कहते हैं अभी अपनी स्थिति को ऊंचा उठाओ, संपूर्णता के समीप अपने कदम पहुंचाओ ताकि प्रत्यक्षता का नगारा बच जाए, समझा? तो इसलिए योगाभ्यास में हम सदा मस्त रहें। योगाभ्यास के द्वारा कहते खजाना पाना है तो खो जाना आना चाहिए, अगर खो जाना नहीं आता तो खजाना नहीं मिलता। इसलिए बाबा की याद में समा जाए, खो जाए, ये अभ्यास हमारा बहुत अच्छी तरह से बढ़ता रहे। अंतिम समय ये शरीर आग में जले, धरती में डूबे, पानी में डूबे, कुछ भी हो जाए, ये शरीर क्या है? ये तो मैटर है, शरीर तो ये क्या है? मिट्टी है। लेकिन एक शरीर सेकंड में हमें शरीर से न्यारा होना है और इसी सेकंड बाबा की याद के झूले में बैठना है, समझा? शरीर तो एक साधन है ना, उस साधन को हम यूज कर रहे हैं, हम खुद तो है नहीं ना, हम खुद तो आत्मा है। इसलिए अविनाशी आत्मिक स्थिति में हमें बहुत अच्छी तरह से स्थित होना है और देह के भान को हमें हटाते जाना है, गलाते जाना है और मर जीवा जीवन अनुभव करके पुराने जीवन से मरना है और नए जीवन से सतयुगी संगमयुगी जीवन में हमें अनुभव करना है। समझा? ठीक है, अभी विनाश और एडवांस में किसी को कुछ प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं, कोई भी प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। अभी कहते हैं 100 साल का संगम युग है, अभी 77 तो हो गए, अभी 23 बाकी है सिर्फ। तो ये ट्रांजिट पीरियड जरूरी नहीं है 23 साल का ही होगा, ये रफली बाबा ने बता दिया है। तो कृष्ण जब जन्म लेगा उसके लिए अभी टाइम है, अभी बाबा का जो पार्ट चलेगा वो भी अभी थोड़े समय तक तो चलेगा। जब वक्त तक परिस्थितियां बिगड़ेगी, बिगड़ती नहीं है तब तक बाबा का पार्ट चलेगा, परिस्थितियां बिगड़ेगी तो बच्चे वहां पहुंच ही नहीं सकेंगे तो बाबा आके क्या करेंगे। तो थोड़ा समय तक अभी ये बाबा का कुछ एक वर्ष पार्ट चलेगा, फिर बाबा का पार्ट जो है सूक्ष्म वतन में चलेगा, वहां से बाबा टचिंग पावर और कैचिंग पावर के द्वारा बच्चों की पालना करेंगे। जिनकी लाइन बुद्धि की क्लीन होगी, क्लियर होगी, उन्हों को विशेष टचिंग मिलेगी और वो टचिंग को वो कैच भी कर सकेंगे और स्वयं के जीवन में और साथियों के जीवन में वो प्रेरणा देकर उनको आगे बढ़ाएंगे। ये पालना बाबा हमें देंगे। तो कृष्ण के जन्म के लिए अभी टाइम है, क्योंकि ब्रह्मा बाबा ट्रिब्यूनल में बैठेंगे, उसके बाद जाएंगे, उसके बाद कृष्ण का जन्म होगा। समझा? तो उसके लिए हमें तैयारी करना है, कृष्ण के साथ रास करना है, तो कृष्ण जैसे संस्कार हमें बनाना है, उसके समान बनाना है। रास कौन कर रहे हैं? समान जो बनेंगे उनके साथ वो रास करेंगे। समझा? इसलिए तैयारी हमें बहुत अच्छी तरह से करना है। अशरीर स्थिति का अभ्यास करना है। बाबा कहते हैं जो महावीर बच्चे हैं वही विनाश की लीला को देख सकेंगे, उसके लिए दिल हमारा बहुत पक्का होना चाहिए। अशरीर स्थिति की बहुत पक्की अवस्था हमारी होना जरूरी होती है। कल हम मनसा सेवा पर विशेष एक क्लास कराएंगे, क्योंकि बाबा का बार बार इशारा मिल रहा है मनसा सेवा करो। दादी जी 25 अगस्त को आई थी, बार बार दादी जी कह रहे थी मनसा सेवा करो, मनसा सेवा बढ़ाओ। तो कल 1 घंटे का मनसा सेवा पर सवेरे हम बहुत अच्छा क्लास कराएंगे। अमृत वेले बहुत सुंदर योग का प्रयोग करने जा रहे हैं 4 से 5, और दिन में मनसा सेवा पर क्लास कराएंगे और शाम को फरिश्ता स्थिति पर क्लास कराएंगे और बाबा कैसे गुलजार दादी के तन में आते हैं वो विधि आपको समझाएंगे। उसके बाद 1 घंटा बहुत पावरफुल योग का प्रयोग सर्कल का करेंगे, वो सारे भट्टी का क्रीम होगा, उसमें किसी को भी मेस नहीं करना है, 6:30 से 7:30। उसके बाद फिर पट्टी की समाप्ति होगी। ऐसा दिनचर्या कल रहेगी, बहुत अच्छे अनुभव बाबा कल भी आपको कराएंगे। ठीक है? ठीक है साहब भाई, पूरा करें? ठीक है तीर्थानी भाई, कुछ प्रश्न है किसी का? ओम शांति। ये तो सिर्फ आइडिया आपको दी ताकि आप अपने स्थिति के स्पीड को बढ़ाएं, पुरुषार्थ में तीव्रता लाएं, इसलिए ये बातों की हल्की फुल्की जानकारी मिलना हमें जरूरी है। ओम शांति। Thank you.
खोलो उठो अब सवेरा हुआ देखो फिर ये न कहना जगाया नहीं
अब पर्वत पे है ज्ञान सूर्य उदय
अब पर्वत पे है ज्ञान सूर्य उदय प्यार के ये न कहना दिखाया नहीं आंखें खोलो उठो अब सवेरा हुआ प्यास में दर्श की आस में काशी में काबा में भटक कैलाश में प्रभु मिलन प्यास में दर्श की आस में काशी में काबा में भटक कैलाश में
आ चुके वो मिल रहे हैं सभी
आ चुके वो सभी मिल लो फिर ये न कहना मिलाया नहीं
आंखें खोलो उठो अब सवेरा हुआ देखो फिर ये न कहना जगाया नहीं आंखें खोलो उठो अब सवेरा हुआ
पाने को एक झलक थी युगों की ललाया भारत में वो छोड़ कर के फलक पाने को एक झलक थी युगों की ललक आया भारत में वो छोड़ कर के फलक
ब्रह्म तन को धारे ब्रह्म से है पधारे
तन को धारे ब्रह्मा से है पधारे सुन लो फिर ये न कहना बताया नहीं आंखें खोलो उठो अब सवेरा हुआ देखो फिर ये न कहना जगाया नहीं आंखें खोलो उठो अब सवेरा हुआ